पार्थ जब से राजवंश फैमिली के अंदर आया था, वहां का माहौल गर्म हो गया था। सब बस उसी की बात को लेकर बहस कर रहे थे। जब पार्थ ने अपना परिचय पार्थ राजवंश के तौर पर दिया, तो सबसे पहले उनके इस बात पर बहस होने लगी कि वो किसका बच्चा है। उर्वशी तो उसे नाजायज तक कह बुलाने लगी। इस बीच पार्थ ने अपनी माँ का खुलासा किया। उसकी माँ का नाम सुनैना रायचंद था, जिसे सुनकर नकुल चौंक गया था। उसी समय प्रशांत भी वहां पर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। नकुल ने एक नज़र प्रशांत की तरफ डाली और फिर हैरानी के साथ पार्थ से पूछा, तो क्या तुम मेरे भाई हो? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तो अभिमन्यु की उम्र के नज़र आ रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं उससे थोड़ा ही बड़ा हूँ। बाकी की कहानी मिस्टर राजवंश खुद सुनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मुझे इन्हीं के आने का इंतज़ार था, पार्थ ने प्रशांत की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। प्रशांत तेज कदमों से चलकर आगे आया। जिस तरह से वो यहाँ आए था, उससे साफ था उन्हें पार्थ के आने का पहले से पता था। वसुधा उसे गुस्से में घूर रही थी। प्रशांत अपना पक्ष रखते हुए वसुधा से बोला, माँ, मेरा यकीन कीजिए, पिछली बार की तरह सुनैना ने मुझे धोखा दिया। नकुल पैदा होने वाला था तब वो प्रेग्नेंट थी और उसने हमें नहीं बताया। जब नकुल की बात थी तब इस बात को इत्तेफाक समझा जा सकता है, लेकिन ये लड़का तुम्हारा बेटा होने का दावा कर रहा है। इसकी उम्र तो देखो, ये अभिमन्यु की ही उम्र का लग रहा है। अंजलि और तुम्हारी शादी एक साल तक चली थी, तब तक तुम सुनैना से पूरी तरह अलग हो चुके थे, तो फिर ये कहाँ से आ गया? वसुधा काफी गुस्से में लग रही थी। पिछली बार जब अचानक सुनैना रायचंद ने नकुल को यहाँ पर भेजा था, तब उसकी वजह से अंजलि और प्रशांत की शादी बर्बाद हो गई थी और उसकी वजह से अभिमन्यु को भुगतना पड़ा था। इस बार भी पार्थ जिस इरादे से आया था, उसे साफ था कि वो अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आया है। प्रशांत के चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव उभर आए थे। इतने लोगों के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन वसुधा के आगे चुप रहने का भी कोई फायदा नहीं था। प्रशांत ने हड़बड़ाते हुए कहा, अंजलि ने मुझे शादी की पहली रात एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तब मैं सुनैना से मिलने गया था। बस वही ये सब हो गया होगा, मैं थोड़ा नशे में था। पूरी फैमिली के सामने सच आ चुका था। पार्थ अभिमन्यु और इशिका की तरफ देखकर उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। तभी अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़कर वसुधा की तरफ देखते हुए कहा, दादी, मैं काफी थक गया हूँ। वैसे भी मेरी इंजुरी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इस घर के ड्रामे तो कभी खत्म नहीं होंगे। आई नीड सम रेस्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वैसे भी जिसने रायता फैलाया है वो उसे समेटेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वसुधा ने जवाब दिया। इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर प्रशांत अपने दूसरे बेटे पार्थ को शेयर देना चाहता है तो उसे अपने शेयर्स में से ही बंटवारा करना होगा। इशिका और अभिमन्यु वसुधा की विला में जा रहे थे। राधिका और वसुधा भी उनके पीछे ही थीं। बाकी की फैमिली वहीं पर रह गई। प्रशांत ने एक नज़र पार्थ की तरफ देखा और हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम वेल सेटल्ड हो, एक अच्छे डॉक्टर हो, ऊपर से तुम्हारे मामा ने पूरा हॉस्पिटल तुम्हारे नाम कर दिया, और भी तुम्हारे कई बिजनेस हैं, फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों नहीं थी, मुझे भी मेरा हक चाहिए। वैसे भी अगर आप नशे में थे और आपको मेरी मॉम की क्लोज आना था तो उस टाइम सोचना चाहिए था। अब गलती की है तो नतीजा तो भुगतना ही होगा, पार्थ ने काफी बेपरवाही से कहा। प्रशांत कुछ कहने लायक नहीं रहा था। वैसे भी उसकी गलती की वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। उसे चुप देखकर पार्थ ने उसे हिलाकर कहा, अपने किए पर बाद में शर्मिंदा होना, इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, मेरे लिए एक अच्छा कैमरा अरेंज करवा दीजिए। बाकी शेयर्स और मेरे हिस्से में क्या आता है इसकी बात हम मीटिंग में करेंगे। पार्थ ने नकुल की तरफ इशारा किया। वो नकुल का सगा भाई था, इस वजह से वो उससे नफरत भी नहीं कर सकता था। नकुल ने पार्थ से कहा, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमारे विला का सबसे बेस्ट कमरा दूंगा। ऑफ कोर्स बिग ब्रदर, अभी तो बहुत सी बेस्ट चीजें मेरे हिस्से में आनी बाकी हैं, पार्थ ने आई विंग करके कहा। नकुल और पार्थ प्रशांत के साथ वहां से जाने लगे। नायरा भी उनके पीछे हुई। उन सबके जाने के बाद वहां सिर्फ उर्वशी और नक्शी बचे हुए थे। नक्श ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, ये क्या बकवास है, पहले ही चाचू की वजह से हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा था, अब क्या मुझे एक और चाचू को अपने सिर पर झेलना होगा? लगता तो यही है, तुम्हारे दादाजी भी बहुत अजीब इंसान रहे हैं। जिस लड़की से शादी की उसे संभाल नहीं पाए और अपनी एक्स से दो बच्चे पैदा कर लिए हैं, यही वजह है कि तुम्हारा बाप ऐसा है, उर्वशी ने गुस्से में जवाब दिया। पार्थ के वहां आने से वो दोनों ही खुश नहीं थे। हाँ, पता नहीं अभिमन्यु चाचू दादू जैसे क्यों नहीं है, जरूर वो अपनी मॉम जैसे रहे होंगे, नक्श ने कहा। वहां से बातें करते हुए वे दोनों अंदर जाने लगे। पार्थ का सच खुलने की वजह से नक्श ने आयशा की बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना वो इस बारे में उर्वशी से अकेले में बात करने का सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और इशिका इस वक्त अपने कमरे में थे। अभिमन्यु बेड पर लेटा हुआ था जबकि इशिका उसके लिए कॉफी बना रही थी। इशिका कॉफी का मग लेकर अभिमन्यु की तरफ पलटी तो वो खोया हुआ लग रहा था। इशिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मुझे पता है तुम पार्थ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन सोचना बेकार है। तुम जानते हो तुम्हारे डैड कैसे इंसान थे, ऐसे में मैं तुम्हारी मॉम को ब्लेम भी नहीं कर सकती कि वो उन्हें छोड़कर क्यों गई थी। अपनी मॉम का जिक्र होने पर अचानक ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव बदलने लगे। इशिका उसकी फीलिंग समझ सकती थी। गलती प्रशांत की थी, पर हमेशा भुगतना अभिमन्यु को ही पड़ता था।
इशिका ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, हाँ, उन्हें तुम्हें टाइम से पहले डिलीवर नहीं करना चाहिए था और ना ही प्रेगनेंसी में तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए था। पर यकीन करो, प्रशांत राजवंश जैसे इंसान के साथ रहना मुश्किल था होगा। उनकी बात हम क्यों कर रहे हैं? मैं पार्थ के बारे में सोच रहा हूँ। जब हम उसे पहली बार मिले थे तो क्या वो हमारे बारे में जानता था? अगर वो सच्चाई पहले से ही जानता था, फिर वो हक लेने के लिए पहले क्यों नहीं आया? मुझे मामला कुछ और लग रहा है इशिका, अभिमन्यु ने अपने दिल की बात रखते हुए कहा। इशिका ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। अभिमन्यु का कहना भी गलत नहीं था। जब पार्थ पहले से ही सच जानता था तो वो अब अचानक वहां क्यों लौट आया था? इशिका ने अभिमन्यु से कहा, हो सकता है पहले उसने हक लेने का ना सोचा हो, लेकिन जब वो हमसे मिला तो उसका मन बदल गया होगा। उसके इरादे कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएंगे। मुझे अपनी पोजीशन जाने का डर नहीं है। प्रशांत राजवंश का एक तो क्या, चार बेटे और खड़े होकर आ जाएं, फिर भी इस लायक कभी नहीं बन पाएंगे कि राजवंश एम्पायर को संभाल सके। बाकी मुझे पार्थ के इरादे सच में सही नहीं लग रहे हैं। हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए, अभिमन्यु ने जवाब दिया। तो इशिका ने उसकी बात पर सहमति जताई। पार्थ का व्यवहार सच में अजीब था। अस्पताल में भी उसने अभिमन्यु की सर्जरी काफी मिन्नतों के बाद की थी। अगर वो सच जानता था तो सर्जरी करने के लिए पहले क्यों नहीं आया? आखिर जो भी हो, अभिमन्यु उसका भाई था। बाद में उसने इशिका के सामने प्रोजेक्ट रखने की शर्त रखी और उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखा। इशिका के प्रोजेक्ट से मना करने के बाद उसने उन्हें आसानी से जाने दिया। ठीक है, तुम आराम करो, कल तुम्हें राजवंश एम्पायर भी जाना होगा। पार्थ यहाँ पर आया है तो जरूर शेयर के बंटवारे की बात होगी और एक बार फिर वो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाने की कोशिश करेंगे। नकुल राजवंश उसे अपनी साइड करने की कोशिश जरूर करेगा, इशिका ने मायूसी से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभिमन्यु ने जवाब दिया।
अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो चलो आराम करो, इशिका ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। इशिका किसी काम के चलते बाहर चली गई थी, तो वहीं जाते ही अभिमन्यु ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और पृथ्वी को कॉल किया। तुम्हें मेरे काफी सारे काम करने होंगे, अभिमन्यु कॉल पर बोला। अचानक हमारे घर में एक आदमी आ गया है जो प्रशांत राजवंश के बेटे होने का दावा कर रहा है। उसका नाम पार्थ रायचंद है। पृथ्वी, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। दूसरी बात, मुझे आयशा के बारे में जानना है। उर्वशी राजवंश के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। पता करो कि हमारे जाने के बाद वो उससे मिलने गई थी क्या। ठीक है सर, लेकिन मुझे कुछ और भी पता चला है जो मुझे आपको बताना है। एक्चुअली ये राज इशिका मैडम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी ने धीमी गंभीर आवाज में कहा। अभिमन्यु इशिका के बारे में सब कुछ जान चुका था, फिर कौन सा राज था जो उसे छूट गया था? फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।